तफसीर सुभान अल्लाह तिलावत जो सुनी तो कैसी है रोंगटों को खड़ा कर देने वाली। और जब तर्जमा आता हो तो फिर सोने पे सुहागा, और ही दिल के अंदर जो है वो असर करती है। सूरत इब्राहिम आयत 18 जो है आप देखिए कि आयत नंबर 18 से लेकर 23 तक एक खास मजमून है, और वो खास मजमून क्या है कि कुफार और मुशरिकीन को आखरत में जिन हालात से सबका पेश आएगा और आपस में एक दूसरे को बुरा भला कहेंगे और उनके अमल किस तरह जाया हो जाएंगे, एक तरफ उनका जिक्र है और दूसरी तरफ अहले ईमान का कि वो जन्नत में कितने मजे से बैठे होंगे और कैसे जो है वो उनके दरमियान सलाम और सलाम जो है वो उसका तबादला हो रहा होगा। तो यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है आयत नंबर 18 में जो कुफ्र करने वाले हैं उनके अमल की मिसाल देते हैं, और आपको पता है ना कि कुफार के अमाल की मिसाल जो अल्लाह ने यहाँ पे दी है बड़ी ही इबरतनाक है, और मिसालों से बातें बड़ी ही समझ में आती है ना, क्योंकि मिसाल ऐसे ही है जैसे किसी चीज को दिखा दिया जाए ना। मतलब मैं वो कहानी अक्सर सुनाया करती हूँ कि एक दफा जो है अंधे से किसी ने पूछा कि ए बड़े मैंने बुजुर्ग थे वो बूढ़े थे कि बड़े बूढ़े या शेख या जो कि खीर खाओगे, उसने कहा कि खीर कैसी होती है, उसने कहा कि जैसे सफेद होता है। उसने पूछा सफेद कैसा होता है, उसने कहा वो बगला नहीं होता, तुमने कभी सीगल वो बगला नहीं देखा वो कैसा होता है। फिर उसने उसने कहा बगला कैसा होता है, उसने अपने हाथ को जब टेढ़ा करके उस बुजुर्ग उस बूढ़े आदमी के आगे किया ना, तो उसने उसके ऊपर हाथ फेर के कहा कि नहीं ऐसी ये टेढ़ी खीर है, ये मैं नहीं खा सकता। यानी क्योंकि उसने सफेद रंग नहीं ना देखा था, आंखों का अंधा था वो, तो अब जब वो बताने वाले ने खीर को उसको डिफाइन करना चाहा कि वो सफेद होती है तो सफेद बगला की तरह होता है, तो बगला कैसा होता है, जब हाथ टेढ़ा किया तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसी खीर नहीं खा सकता ना, उसको तो नजर ही नहीं आता था ना। और यहाँ पे अल्लाह ताला ने इस मिसाल में जो मिसाल दी है बड़ी जबरदस्त है, और सिर्फ मक्का के काफिरों और मुशरिकों और पिछली कौमों के वो लोग जिन्होंने शिर्क किया और कुफर किया ये उनकी बात नहीं है, हम सबको भी अपनी जिंदगियों का जायजा लेना चाहिए। क्योंकि कुफर करना एक तो है ना कि जबानी कुफर, और एक होता है कि कल्बी कुफर, और एक होता है अमली कुफर। तो आज उम्मत मुस्लिमा जो है उनके अंदर भी मुख्तलिफ तरह का कुफर जो है वो पाया जाता है। जैसे अबू जेहल जो था उसको वो दिल से इकरार करता था कुरान का भी और बातों का भी, लेकिन जबान से वो इनकार करता था। शैतान जो था वो क्या था, जबान से जो है वो मानता था लेकिन उसके दिल ने नहीं माना ना, तो इसलिए जो है उसने इंसान को सजदा करने से इनकार कर दिया, अल्लाह के हुक्म को उसने नहीं माना ना। तो ये जो कैफियत है ना इंसान की मुख्तलिफ तरह की होती है, तो हमें भी जायजा लेना चाहिए कि अल्लाह के अहकामात जो हैं उनमें से कितने ऐसे हैं जो हम जबानी तो कहते हैं कि अल्लाह हम तू हमारा अल्लाह और हम तेरे बंदे, तू हमारा खालिक और हम तेरी मखलूक, और तू जो कि कुछ भी हमें हुक्म दे हम तेरे महकूम, लेकिन अमली जिंदगी में कितने ऐसे अहकाम हैं जिस पर मैं और आप चलते ही नहीं है ना, तैयार नहीं होते, मट्टी का मादू नहीं होता जैसे कोई ढेर हो जाए, कदम नहीं उठते, दिलों में ईमान अंगड़ाइयां नहीं लेता, वो जीता जागता नहीं है, तो क्यों हमारे रवैये हमारे अमल जो हैं वो काफरों जैसे हैं। अल्लाह ताला कहते हैं मसलुल्लज़ीना कफरू, जिन लोगों ने अपने रब से कुफर किया, कफरू बे रब्बिहिम, अपने रब से कुफर किया, उस रब से जिसने तुम्हें वजूद दिया, पूरी कायनात को तुम्हारी खिदमत पर मामूर कर दिया, तुम्हारी तुम्हारी नौकर बना दिया पूरी कायनात को, जमीन का जर्रा जर्रा, हर सितारा हर सितारा और सूरज और चांद और हर जो मिट्टी का जर्रा है और कायनात में जितनी भी नेमतें हैं, हर नेमत को अगर मैं और आप गौर करें तो क्या है, अल्लाह ताला ने मेरे और आपके लिए पैदा की, और फिर इंसान ने अल्लाह से कुफर किया। مثل الذين كفروا بربهم، مثال ان لوگوں کی جن لوگوں نے کفر کیا اپنے رب سے، ان لوگوں کی مثال کس چیز کی؟ اعمالہم، ان کے اعمال کی، لوگوں ان کے اعمال کی مثال کیسی ہے؟ ان کے اعمال کی مثال تو ایسی ہے کا جیسے کہ کرما دن اشتدت، گویا کہ راک ہے، ان کے اعمال کی مثال اس راک کی سی ہے اشتدت جس پر زور سے چلے، وہی ان پر کون چلے؟ الریح ہوا، اور وہ ہوا بھی جو چلے ان کے اعمال پر جو کہ راک کی طرح ہیں، ان کے اعمال نہیں ہیں راک ہیں، کفر کی وجہ سے ان کے عمل راک بن گئے، اور اب اس راک پر اگر ہوا چلے گی، اور ہوا بھی کیسے؟ فی یومن آصف، ایسی ہوا جو طوفانی دن کی ہوا ہے، ایسی ہوا جو کہ اڑا دینے والی ہے، جو کہ آندھی کے دن کی ہوا ہے، بہت زور کی ہے، جو اور آپ کو پتہ ہے نا کہ جب آندھی آتی ہے تو جو چیزیں وزن بھی رکھتی ہیں ان کو اڑا اڑا کے پھینک دیتی ہے نا، اور اگر کوئی چیز کا وزن ہی نہ ہو ہی راکھ، آپ کو پتہ ہے جو راکھ ہوتی ہے یہ ایشز جو ہے یہ کیا ہوتے ہیں؟ جیسے کہ مٹی سے بھی زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہوتی، مٹی جو ہے نا اس کے اندر پھر بھی ایک جان ہوتی ہے، تو راکھ کیا ہے کہ کوئلے جو جل گئے اور مر گئے، ختم ہو گئے، ہے نا، آگ جو جل کر ختم ہو گئی، تو کفر کی وجہ سے ان لوگوں کے اعمال کی مثال اس راکھ کسی ہے جسے طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو، لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، اور وہ جو ہے وہ قدرت نہیں رکھیں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ لا یقدرون، ان کے ہاتھ نہیں آئے گا، مما کسبوا، جو وہ کسب کرتے رہے، جو وہ کمائی کرتے رہے، یعنی ان کو اپنی کمائی میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا، الا شئی، ذرہ بھی نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا، آپ کو پتہ ہے نا اگر کسی کے عمل جیسے کافر ہیں ان کے عمل بہت اچھے ہیں لیکن ایمان نہیں ہے ان کے پاس، اخلاص نہیں ہے نیت میں، تو ان کے عملوں کا کوئی وزن نہیں ہے، اسی طرح اگر جو ہے انسان جو ہے وہ عمل کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کفر بھی کرتا چلا جاتا ہے، وہ عمل تو کرتا ہے لیکن نیت میں اخلاص نہیں ہے، وہ دوسروں کے لیے کرتا ہے، تو ان کی مثال بھی، ان عملوں کی مثال بھی اس راک کی سی ہے کہ جس کو زور کی آندھی چلے، ایسی ہوا چلے جیسے کہ آندھی کے دن کی ہوا ہوتی ہے، اور اس کے عملوں کو راک کی طرح اڑا کر سائڈ پہ کر دے، گویا کہ کفر کرنا، شرک کرنا یا نفاق کرنا، یہ ساری عمل ایسے ہیں کہ انسان کی جو زندگی بھر کی کمائی ہے اس کو ضائع کر دینے والے ہیں، تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے مثال میں کیا بتا رہے ہیں کہ مشرکین کافر ان کے اعمال کی مثال قیامت کے دن ایسی ہوگی کہ دنیا میں انہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق تو اچھے عمل کیے تھے لیکن قیامت کے روز ان کے اعمال راکھ کا ایک ڈھیر ہوں گے، جس پر کسی آندھی والے دن کی جب تیز ہوا چلے تو اس کو جو ہے وہ اڑا کر رکھ دے، اسی مضمون کو اللہ رب العزت جو ہیں وہ سورت آلِ عمران میں اس طرح بیان کرتے ہیں، آپ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں اور آیت نمبر ہے 117، مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون، تو آپ دیکھ لیں کہ اس سے بھی کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا تو ان کا یہ عمل جو ہے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آیا، ہے نا، اور کہیں اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے عملوں کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ انسان جو بھی عمل کرے گا ہبا منصورا، یعنی اس کی طرح ان کے عمل جو ہیں وہ اڑا دیے جائیں گے، گویا کہ ان کو اپنے عملوں کا جو ہے کچھ بھی اجر، کچھ بھی رزلٹ، کچھ بھی فائدہ جو ہے وہ نہیں ان کو ملے گا، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے عمل جو ہیں उनमें तौहीद नहीं थी, उन्होंने जो है वो शिर्क किया था, उन्होंने जो है वो कुफ्र किया था। फरमाया ज़ालिका हुवा दलालुल बईद, और ये बहुत दूर की गुमराही है, ये परले दर्जे की जो है वो बहक जाना है। तो इसके दरअसल मानी ये हैं कि दुनिया में इन्होंने जो काम अच्छे समझ कर किए कि इनसे इनको बड़ा फायदा होगा, तो अल्लाह के यहाँ तो इनके इन अमलों की कोई कीमत नहीं है, अल्लाह के यहाँ इनके इन अमलों का जो है वो कुछ भी जो है फायदा नहीं है। तो यहाँ पे ये पूरी आयत शरीयत के एक अहम उसूल को, एक अहम कुलिये को बयान करती है कि अमाल की जजा और सजा जो है वो नियत पर है, और अगर नियत अच्छी है तो फिर उसका कुछ बदला मिलेगा, और अगर नीयत अच्छी नहीं है तो फिर कुछ भी फायदा नहीं होगा। जिस तरह हजरत अंस बिन मालिक कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह मोमिन पर इसकी नेकी के सिलसिले में जरा भी जुल्म नहीं करेगा, इसकी नेकी का बदला दुनिया में भी दिया जाएगा और आखरत में भी, और काफिर ने जो नेक अमल किए होंगे इसको इनका बदला दुनिया ही में दे दिया जाएगा, यहां तक कि जो आखरत में पहुंचेगा वो काफिर, तो कोई नेकी होगी ही नहीं जिसका उसको सिला दिया जाए। इस हदीस को जो है वो इमाम मुस्लिम ने रवायत किया है। तो काफिरों का चूंकि आखरत पर ईमान ही नहीं है, उनकी नीयत ही नहीं है, तो इसलिए आखरत में उनको अजर देने का, सवाब देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो गोया कि नेकी भी बर्बाद और उसके साथ क्या है कि गुना लाजिम वाला सिलसिला जो है वो काफिरों के साथ हो जाएगा। तो इससे फिर ये बात पता चलती है कि दुनिया की जिंदगी में जो भी अमल करें तो सोच समझ कर करें, जो भी अमल करें तो उसमें कुफ्र ना करें, शिर्क ना करें। फिर फरमाया अलम तरा अन्न अल्लाह खलक समावाती वल अर्द बिल हक, क्या तुम देखते नहीं हो, क्या तुमने देखा नहीं कि अल्लाह तो वो है जिसने पैदा किया आसमानों और जमीन को हक के साथ। तो अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन जो पैदा किए हैं, ये जो अजीमुशान कारखाना तख्लीक का है, ये अजीमुशान जो अल्लाह ताला ने कहकशाएं और ये दुनिया जो सजाई है, तो तुम क्या समझते हो कि ये कयास है, ये बस ऐसे ही बनाई और इसको अल्लाह ताला ऐसे ही जो है वो खत्म कर देगा? नहीं, बल्कि आसमान और जमीन और जिंदगी और मौत और ये जो अल्लाह ताला की कायनात में बिखरी हुई नियमते हैं, इसको पैदा करने का मकसद है, और वो मकसद क्या है? इम्तहान है ना। तो कायनात का जर्रा जर्रा जो है वो पुकारता है, कायनात का जर्रा जर्रा जो है वो बताता है कि जिस अल्लाह ने आसमान और जमीन को बनाया वो एक दूसरी जो है वो दुनिया बनाएगा, यानी आखरत आएगी और फिर हिसाब किताब जो है वो होगा। तो आसमानों जमीन अल्लाह की कामिल कुदरत और हिकमत की निशानियां हैं। तो फिर अल्लाह का इंसानों को दोबारा पैदा करना और हिसाब किताब लेना कोई मुश्किल नहीं है, जब जो अल्लाह आसमान और जमीन को पैदा कर सकता है, क्योंकि अहले जो शिर्क थे या काफिर थे वो बार बार ये कहते थे ना, इनकार करते थे कि कयामत कब आएगी, कैसे आएगी, वो ऐसे कैसे होगा कि जब हमारी हड्डियां भी गल सड़ जाएंगी, हम खत्म हो जाएंगे, हमें फिर जिंदा किया जाएगा। तो अल्लाह ताला ने इसका जवाब दिया है, ये जो आयत नंबर 19 है ना, ये दलील है इस बात पर कि एक तो आखिरत जरूर होगी, और दूसरा दलील है इस बात पर कि वो लोग जो कि अल्लाह ताला जो है वो उसकी बंदगी नहीं करते, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में इसलिए पैदा किया, उसको अशरफुल मखलूकात में से बनाया, अशरफुल मखलूकात बनाया क्यों? ताकि वो अल्लाह की बंदगी करें। तो जो अल्लाह का कहना नहीं मानते, हक अल्लाह, हक किताब, हक रसूल, हक उसके अहकामात, उसको नहीं मानते, तो अल्लाह ताला कहते हैं ई यशा युज़हिबकुम व याति बिखल्क़िन जदीद, वो चाहे तो वो ले जाए तुम सबको और नई एक खलकत तुम्हारी जगह जो है वो ले आए। तो इससे क्या बात पता चलती है कि वो अल्लाह जो है वो तुम्हारी नाफरमानी की वजह से तुम्हें खत्म कर दे, तुम्हें जाया कर दे, और तुम्हारी जगह एक और मखलूक जो है वो उसको पैदा कर दे। सूरत निसा आयत 133 में इसकी दलील आप पहले पढ़ चुकी हैं, इन यशा युज़हिबकुम अय्युहन्नास व याति बि आखरीन व कान अल्लाहु अला ज़ालिका कदीरा, है ना। और इसी तरह सूरत तौबा में भी आप जो हैं ये बात पढ़ चुकी हैं कि अल्लाह ताला एक तरफ ये कहते हैं कि जो है वो निकलो और अल्लाह के रास्ते में जो है वो जिहाद करो, और दूसरी तरफ जो है अल्लाह ताला ये बात भी कहते हैं कि अगर तुम जो है वो अल्लाह के रास्ते में नहीं निकलोगे तो अल्लाह ताला क्या करेंगे, तुम्हें तो सख्त सजा देंगे और एक और मखलूक तुम्हारी जगह ले आएंगे। सूरह तौबा और आयत नंबर है 39। इल्ला तनफिरु युअज्जिबकुम अजाबन अलीमा व यस्तबदिल कौमन गैरकुम वला तदुरुहु शैया वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि अल्लाह तुम लोगों को ले जाए और तुम्हारी जगह एक नई मखलूक जो है वो ले आए, और गोया के एक तरफ जो है अल्लाह ताला ये बात बता रहे हैं कि अगर तुम जिंदगी के मकसद को पूरा नहीं करोगे तो कूड़ा क्रिकेट की तरह जो है वो अल्लाह ताला तुम्हें खत्म कर देंगे और तुम्हारी जगह जो है ऐसे लोगों को लाएंगे जो कि फिर अल्लाह की जो है वो बंदगी करेंगे। और दूसरी बात जो है वो क्या बताना यहाँ पे मकसूद है कि अल्लाह ताला जो है वो गालिब है, कैसे बताया, वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़, ऐसा करना अल्लाह पर कुछ भी मुश्किल नहीं है। यानी दो टोक अंदाज है अल्लाह ताला का कि क्या कि अगर तुम्हें जो अल्लाह ने बेहतरीन इंसान बनाया था और तुम अगर अल्लाह की बंदगी नहीं करते तो फिर अल्लाह ताला तुम्हें हटाकर कोई और मखलूक को पैदा करेगा, नए लोगों को लाएगा जो कि फिर अल्लाह की बंदगी करेंगे। और कुफार के साथ यही हुआ था ना, इनकार किया उन्होंने तो अल्लाह ताला ने जो है फिर उनको जो है वो क्या किया कि हर दौर के जो काफिर थे उनको सफ़े हस्ती से मिटाया मुख्तलिफ तरीकों से। फिर फरमाया فبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا। अब यहां पे आप देखें तो ये आयत नंबर जो है ये 21 यहां से लेकर और आयत नंबर जो 22 है, यानी दो आयतों में अल्लाह ताला एक खास मजमून जो है वो बयान कर रहे हैं। और ये खास मजमून क्या है कि आखिरत में कुफार जो है अपने बड़ों से मदद का सवाल करेंगे, जो फॉलोअर जो है ना वो अपने लीडर से जो है ना वो सवाल करेंगे, उनके सामने जो है वो रोएंगे चिल्लाएंगे फरियाद करेंगे और उनसे कहेंगे कि हमने दुनिया में तो तुम्हारी कहना माना था, हमने तुम्हारा कहना मानकर जो है वो गुनाह किए थे, अब ये आखिरत में जो मुसीबत की जो अजाब की घड़ी है इसमें कुछ तो हमारी मदद करो, हमारे अजाब को ही हल्का कर दो, या फिर ये है हमारी कुछ सिफारिश ही कर दो। तो यहाँ पे अल्लाह ताला जो है आखिरत के हाल को जो है वो बेनकाब करते हैं, क्या बताते हैं, वबरजू लिल्लाहि जमीअन फकालत दुआफा लिल्लजीना इस्तकबरू। वबरजू और वो बेनकाब होंगे और वो लोग जो हैं वो रू बरू खड़े होंगे लिल्लाही अल्लाह के, जमीअन सब के सब, तो अल्लाह के रू बरू ये सब के सब कौन खड़े होंगे, यानी मैदान हशर में तमाम लोग अल्लाह के सामने खड़े होंगे, कोई अल्लाह से छुप नहीं सकेगा क्योंकि बरजू पर्दे की ओट से बाहर आना है। तो इसमें वो लोग जो कि शिर्क करते थे और वो जो उनके जो थे वो सरपरस्त थे, जिनको उन्होंने अपना सरपरस्त साथी मददगार बनाया हुआ था, वो सारे अल्लाह के सामने खड़े होंगे, यानी पैरवी करने वाले भी और वो लीडर जिनकी पैरवी की जा रही थी तो वो सब अल्लाह के सामने खड़े होंगे। फकालत दुआफाऊ, वो जो कमजोर थे ना, जो पैरोकार थे, जो छोटे थे, बस वो कहेंगे लिल्लजी नस्तकबरू, उन लोगों से जिन्होंने किब्र मांगा था, यानी दुनिया में जो बड़े बने हुए थे, तो जो छोटे हैं वो बड़े बनने वालों से कहेंगे कि इन्ना कुन्ना लकुम तबअन, कि हम तो बेशक थे तुम्हारे ताबे, है ना, हमने तो तुम्हारी ही अताअत की थी, यानी दुनिया में हम जो कुछ करते थे तुम्हारा कहना मानते थे, तुम हमारे आगे आगे चलते थे, हम तुम्हारे पीछे पीछे चलते थे, तुमने जो हुक्म दिया हमने तुम्हारे अहकाम की तामील की। तो अब जो है, जो हमने तुम्हारा कहना माना, तुम्हारी जो अंधी तकलीद की, जो आंखें बंद करके, अब उसकी वजह से हम इस मुसीबत, इस अजाब में घिर गए हैं। क्योंकि एक तरफ जो है वो अजाब है, जहन्नुम है, अल्लाह ताला की जात है, हिसाब किताब हो रहा है, और दूसरी तरफ उनको अपना जो अंजाम नजर आ रहा है, तो वो उनको बुरा भला कहना शुरू करेंगे, उनसे बात करेंगे, ये मुकालमा जो है बताया जा रहा है। फहल अंतुम मुगनून अन्ना मिन अजाबिल्लाही, यानी हमने तो तुम्हारा कहना माना था, अब बताओ कि क्या तुम जो है वो हमसे अल्लाह के अजाब को दूर कर सकते हो? क्या तुम अल्लाह के अजाब से हमको बचाने के लिए कुछ हमारी मदद कर सकते हो? यानी मुश्किल घड़ी है, हमने तुम्हारी अताअत की, तो अब क्या करो कि ये अजाब हमसे हटाओ, और कुछ नहीं कर सकते तो हमारी सिफारिश ही करो अल्लाह के हजूर, और कुछ नहीं कर सकते तो हमारे अजाब को ही हमसे थोड़ा हल्का कर दो, यानी अल्लाह के अजाबों में से कुछ अजाब ही हमसे दूर कर दो। यहाँ पे ये जो है ना, अंतुम मुगनूना, कि क्या तुम जो है वो हमको बचा सकते हो, मिन अजाब इल्लाही, अल्लाह के अजाब से, मिन शई, कुछ थोड़ा सा ही कुछ तो करो ना। कालू लव हदाना अल्लाहु लहदैनाकुम, अब उनके वो जो लीडर हैं, उनके वो जो शरीक हैं, वो जो उनके साथी और मददगार थे, जो सरपरस्त थे, जिनकी वो आंखें बंद करके दुनिया में पैरवी करते रहे, तो वो उनको जवाब देंगे, लो हदान अल्लाहु, के अगर अल्लाह ने हमें कोई राह दिखाई होती, अगर हदायत करता हमको अल्लाह, लहदैनाकुम, तो हम जरूर तुमको भी जो है वो हदायत करते, तो हम जो है वो जरूर तुम्हारा जो है वो कुछ भला करते। तो जब वो मदद के लिए उनको पुकारेंगे, तो वो क्या जवाब देंगे कि अगर दुनिया में हमें अल्लाह हदायत की तौफीक देता, तो हम भी तुम्हें सीधे रास्ते पर चल पड़ते, ले चलते, हमने ठोकर खाई तो तुम्हें भी ठोकर खिलवाई ना, हम तो डूबे हैं सनम, तुझको भी ले डूबेंगे। तो मतलब क्या है कि हम मुसीबत में इसलिए गिरफ्तार हैं कि हमें तो खुद ही वहां पे हदायत नहीं मिली, और आपको पता है ना कि वहां पे वो अल्लाह को ब्लेम करेंगे, लेकिन अल्लाह तो हदायत किसको देता है? जो हदायत चाहता है, और जो खुद नहीं चाहता, तो हदायत अल्लाह की अंधी बाट नहीं है कि वो अल्लाह ऐसे ही जो है वो दे दे। और फिर वो उस वक्त जो है क्या जवाब है, सवा उन अलैना अजजेना अम सबरना मालना मिम महीस, फिर वो कहेंगे कि बराबर है हमारे लिए, अब तो यकसा है, खा हम जजा फजा करें या सबर, अब हम जो है हम सब के लिए ये चीज जो है ये बराबर है कि हम बेकरारी का इजहार करें या सबर करें, तो हमारे लिए तो अब कोई खलासी है ही नहीं, अब हम कहीं बचकर जो है वो जा नहीं सकते। तो मर्जी है, या तो सबर करो, या फिर जो है वो खामोश रहो, या फिर ये कि घबराओ और चिल्लाओ। तो इसमें मुफस्सरीन जो हैं वो क्या इसका जवाब देते हैं, वो ये कहते हैं कि जन्नतियों को जो जन्नत मिली, तो ये लोग आपस में कहेंगे जहन्नमी बाज के असल में वो अल्लाह के सामने दुनिया में रोते बहुत थे, हर वक्त गिड़गिड़ाते थे, परेशान होते थे, तो हम भी अल्लाह के रास्ते में थोड़ा रो लेते हैं, अजज़ेना, है ना, तो रोएं धोएंगे, फरियादे करेंगे, आहुजारी करेंगे। अब जो है उससे भी उनके अजाब में कोई कमी नहीं हो रही। अब जो है फिर वो क्या कहेंगे कि अच्छा नहीं, जन्नतियों को जो जन्नत मिली वो तो उनके सब्र की वजह से मिली, तो कहते हैं कि चलो हम सबर करते हैं, फिर वो भरपूर सबर का मुजाहरा करेंगे, उसका भी उनको कोई फायदा नहीं होगा। तो उस वक्त फिर ये वो आपस में कहेंगे कि बराबर है हमारे लिए, अजजेना हम सबर ना मालना मिन महीस, कि अब जो है बचने की, छुटकारे की कोई शक्ल नहीं। तो ये जो ये गुफ्तगू है ना, मुफस्सरीन कहते हैं कि ये उनकी गुफ्तगू अब जहन्नुम के अंदर की है, जो यहां पर बयान की जा रही है, कि वो आपस में एक दूसरे को ब्लेम करेंगे और आपस में एक दूसरे से झगड़ा करेंगे, एक दूसरे पर गुमराह होने का इल्जाम धरेंगे। और मुफस्सरीन में से बाज ये कहते हैं कि ये झगड़ा मैदाने हशर में होगा। और जैसे कि आप देखिए कि सूरत सबा आयत नंबर 31 से 33 इसकी दलील में, यानी हशर में है या कयामत में उनका झगड़ा, तो बार बार अल्लाह ताला मुख्तलिफ जगह पे ये मजमून जो है वो बयान करते हैं कि قال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم। अल्लाह ताला कहते हैं कि कुफर करने वाले जो है ना, काश कि तुम इन जालिमों को उस वक्त देखो जब ये अपने रब के सामने खड़े होंगे। यरजिउ बादहुम इला बादनिल कौल, कि ये जो है एक दूसरे को इल्जाम दे रहे होंगे। यकुलुल्लजीना स्तुदइफू लिल्लजीना इस्तकबरू, जो अदना दर्जे के कमजोर लोग हैं वो बड़े दर्जे के लोगों से कहेंगे लौला अंतुम लकुन्ना मुमिनीन, अगर तुम ना होते ना तो हम मुसलमान होते। قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا वो जो बड़े हैं वो कमजोरों को क्या कहेंगे, अपने पैरोकारों को, अनहनु सददनाकुम अनिल हुदा बादा इज जाअकुम बल कुंतुम मुजरिमीन, कि क्या तुम्हारे पास हदायत आने के बाद हमने तुम्हें इसे रोका था, नहीं बल्कि तुम खुद ही गुनाहगार थे। है ना, तो असल बात क्या है कि इसके जवाब में ये कमजोर लोग उन मुतकबरों से कहेंगे नहीं नहीं बल्कि तुम्हारा दिन रात मकरो फरेब जो था, इससे हमें अल्लाह के साथ कुफर करने और इसके साथ शरीक मुकर्रर करने का हुक्म देना हमारी बेईमानी का बायस बना, और वो अजाब को देखते ही सब के सब दिल ही दिल में पशेमान हो रहे होंगे। और फिर आगे मजीद जिक्र है कि किस तरह उनको जो है समंदर अल्लाह ताला अजाब में जंजीरों में जो है वो जकड़ देंगे। फिर इसी तरह यानी इसकी दलील में आप सूरत मोमिन आयत 47 से जो है 47, 48, 49 भी पढ़ सकती हैं कि वाइज यतहाज्जूना फिन्नार, कि ये आपस में दोजख में एक दूसरे से झगड़ेंगे। कमजोर लोग तकबुर करने वालों से कहेंगे जिनके ये ताबे थे कि इन्ना कुन्ना लकुम तबान फहल अंतुम मुगनून अन्ना नसीबम मिनन नार, कि हमने तुम दुनिया में तुम्हारा कहना माना था, आज क्या तुम आग का कोई हिस्सा हमसे हटा सकते हो। और उस वक्त वो लोग जवाब देंगे قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد, तो कहेंगे हम सब आग में हैं अब गिरे हुए, अब अल्लाह का जो हुक्म है अल्लाह तो अपने फैसले को नाफिज कर चुका, अब हम कुछ नहीं कर सकते। फिर तमाम जहन्नमी मिलकर क्या करेंगे, जो है वो जहन्नुम का जो मालिक, जहन्नुम का जो इंचार्ज फरिश्ता है ना, उससे कहेंगे وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم, फरिश्ते से कहेंगे तुम ही अपने परवरदिगार से दुआ करो, تخفف عنا يوما من العذاب, कि वो किसी दिन तो हमारे अजाब में कोई कमी करते। अब आप देखें कि दुनिया में भी ऐसा होता है ना कि कुछ लोग खुद अच्छा काम नहीं करते, वो कहते हैं असल में जो है मेरे दोस्त अच्छे नहीं थे, और मेरे घर वाले, जैसे औलाद कहे अपने माँ बाप को कि मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया नहीं बताया नहीं इसलिए मैं ऐसी हूँ, है ना। बीवी कहे कि शौहर मेरा ऐसे कहता है ना इसलिए मैंने ऐसे कर लिया, शौहर कहे कि नहीं बीवी जो है उसकी वजह से मैं गलत कामों में पड़ गया, उसके मुतालबात थे कि नया सोफा नया कालीन और स्टेटस, तो उसकी वजह से मैंने हराम काम किए, है ना। तो और बाज़ औक़ात जो है वो एक बंदा छुट्टी कर लेता है और पेपर हो जाता है और फिर फेल हो जाए और कहे कि नहीं मेरे दोस्त ने कहा था आज ना आ जाओ कुछ नहीं होगा और मैं नहीं आया, ना दूसरे को बंदा ब्लेम करे कि मैं आज इसलिए नहीं आया, उसने कहा था कि हो सकता है स्नो की वजह से छुट्टी हो जाए, तो वहां तो पेपर हो गया, है ना। तो दुनिया में भी जो ऐसे बच्चे वालदैन कहीं जाए पीछे वालों को कहें कि घर में सारे काम करके रखना, और सब खेल रहे हैं सब उल्टा कर दिया घर को, अब अम्मी अबू आके जब नाराज होते हैं तो कहते ये भाईजान ने ये कहा था कि अभी जो है ना अभी खेल लें, और तो मम्मी कहती है हम तो तुम्हें बता कर गए थे कि क्या करना है ना। तो दुनिया में भी एक दूसरे पे इंसान ब्लेम करता है ना, लेकिन असल बात क्या है, इंसान कितनी माजरतें पेश करे मगर वो अपने आप को खूब जानता है। एक तरफ तो ये इंसान आपस में पीर और मुरीद और लीडर और उनकी उनको फॉलो करने वाले वो एक दूसरे को ब्लेम करेंगे। मसलन जैसे किसी ने कुफर किया, उसको देख के और कई लोग कुफर करते हैं, कोई एक जो है वो गलत बेहुदा किस्म का फैशन का लिबास पहनता है तो लोग कहते हैं जी दुल्हने ऐसे ही कपड़े पहनती हैं कि आगे से पूरा सीना नजर आता है। यानी दुल्हन के लिबास का तसव्वुर ही ये है कि आगे से सीना नजर आए ना। तो क्या हर दुल्हन जो बनती है वो कोई ये कह सकेगी अल्लाह ताला को कि उस जमाने में रिवाज ये था तो इसलिए हमने भी ऐसे कपड़े पहने? आंखें तो साथ है ना हम सबकी, है ना? तो हम सबको खुद देखना है कि क्या करना है, क्योंकि हम सबको अल्लाह को जवाब देना है। कोई किसी को ब्लेम नहीं कर सकता, हर शख्स की अपनी जिम्मेदारी है। कोई ये कहे कि फैशन है, आजकल मार्केट में कपड़े ही बारीक आते हैं तो हम क्या करें, लेकिन फैशन रवाज कौन देता है, फैशन परवान कौन चढ़ाता है? आप हैं, हम सभी हैं ना। तो हम जो मांगते हैं वो बाजार में आ जाता है, और जो बाजार में गलत आ जाए आप ना खरीदेंगे तो वो फिर वो चीज ले आएंगे जो आप चाहेंगे। तो असल बात ये है कि चलो तुम इधर को हवा हो जिधर की, ये मेरी जिंदगी का मकसद नहीं होना चाहिए, ये आपकी जिंदगी का मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या है कि होती आई है, अच्छों को बुरा कहते हैं, करना वो है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को पसंद है। वकाल शैतानु, ये आयत नंबर 22 में दोजख में शैतान की तकरीर जो है ना यहाँ पे बयान की जा रही है। हिसाब किताब के बाद जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, दोजखी दोजख में चले जाएंगे। उस वक्त कुफार जो है दोजख में जाकर या दाखिल होने से पहले इबलीस को जो है ना लान तान करेंगे, फिर उसको इल्जाम धरेंगे। वकाल शैतानु, और उस वक्त शैतान कहेगा लम्मा को दियल अमरू, के फैसला जब चुका दिया जाएगा, फैसला अब हो चुका है, किसको क्या सजा मिलने वाली है, किसको क्या जजा मिलने वाली है। को दिया माजी मजहूल है, फैसला कर दिया गया। अम्र हर एक के मामलात का, इन्नल्लाह वादकुम वादल हकी, शैतान कहेगा हकीकत ये है कि अल्लाह ने जो वादे तुमसे किए थे वो सारे सच्चे थे। इन्नल्लाह वादकुम, कि जो वादे बेशक अल्लाह के थे, वादल हक, सच्चे थे वो सारे। फवादतुकुम फअखलफतुकुम, और मैंने जितने वादे किए इनमें से कोई भी पूरा ना किया। फअखलफतुकुम, मैंने उसकी खिलाफ वर्जी की। अब शैतान जो है उस वक्त जो है वो ये बात बताएगा कि अल्लाह ताला ने जो है वो पैगंबरों के जरिए किताबों के जरिए जो वादे किए थे वो तो सारे सच्चे थे, लेकिन मैंने जितनी बातें की थी ना वो सारी झूठी थी, वो झूठे थे वादे, है ना। वमा कान लिया अलैकुम मिन सुल्तान, और मेरा तुम पर कोई जोर तो नहीं था, मेरी तुम पर कोई हुकूमत तो नहीं थी। अब वो दूसरी बात क्या कहेगा, यानी पहली बात ये है कि वो इकरार करेगा कि मेरे वो जो चालें फरेब और मकर थे जो तुम्हें सबज बाग दिखाए थे वो तो सारे झूठ थे, ठीक है। दूसरी बात वो ये कहेगा कि मेरा तुम पर कोई इकतदार जोर तो नहीं था ना, हुकूमत तो नहीं थी ना, जैसे एक हुक्मरान है वो अपनी हुकूमत के बल पे को काम मनवाता है, बल्कि तीसरी बात फिर कहेगा इल्ला अन दाउतुकुम, बस मैंने तुम्हें तो दावत ही दी थी, बुराई की, शिर्क की, कुफर की, निफाक की, मैंने तो इतना ही कहा था कि अभी क्यों उठे हो, इतने थके हुए हो, थोड़ा और आराम कर लो, तुमने नमाज क्यों कजा की, तुम क्यों नहीं उठे। मैंने तो इतना ही कहा था कि कपड़े जब बेहुदा किस्म के पहनोगे तो खूबसूरत लगोगे, तो तुमने कपड़े क्यों पहने थे बेहूदगी वाले। इल्ला अन दाउतुकुम, मैंने तो बस सिर्फ बुलाया था, दाई बुलाने वाला होता है ना, दाउतुकुम बस दावत दी थी, फर्स्ट जब तुम ली फिर तुमने उसको कबूल कर लिया। जॉब फसमूद अल्लजीना जाबू सखरा बिलवाद, जाबू क्या होता है, जॉब के पत्थरों का तराशना, यानी जो है एक मुश्किल काम करना ना। तो तुमने मेरी दावत पर लबैक किया, तुमने जवाब दे दिया। जवाब देना इतना आसान नहीं होता ना कि कोई बात करता है तो जिस तरह पत्थर को तराशना मुश्किल होता है, इसी तरह कोई भी काम करना उसका जवाब देना मुश्किल होता है ना, लेकिन इंसान करता है। तो तुमने मेरी बात का जवाब दिया, तुमने मेरी दावत पर लबैक कहा, यानी गोया कि मैंने तो इतना ही बताया था कि चोरी से जिंदगी तुम्हारी कैसी बनेगी, मैंने जबरदस्ती तुम्हारा हाथ पकड़ कर चोरी थोड़ी करवाई थी, तुमसे डाके थोड़ी डलवाए थे, तुम्हें जो है वो रिश्वत तुमसे जबरदस्ती थोड़ी कहा था कि ले लो, वैसे ही बस दुनिया के खूबसूरत बनाकर पेश किया था, सबस बाग दिखाए थे ना, है ना। फर्स्ट जब तुम ली, बस तुमने मेरी बात को कबूल कर लिया, फला तलू मुनी, फिर तीसरी बात ये कहेगा, अब मुझे नहीं मलामत करो, मुझे नहीं बुरा भला कहो, अब मुझे क्यों जो है वो लान तान करते हो, वलूमू अनफुसकुम, अपने आप ही को मलामत करो, आज अपने आप को ही बुरा भला कहो। मा अना बिमुसरिखिकुम व मा अंतुम बिमुसरिखी, क्या कहा कि यहां ना मैं तुम्हारी, जो तुम चीख रहे हो चिल्ला रहे हो और फरियाद कर रहे हो कि कोई अजाब हटा दे, कोई मेरी सजा को ले ले, मेरे गुनाहों का बोझ हटा दे, ना तो मैं तुम्हारी फरियाद रसी कर सकता हूँ, यानी तुम्हारी फरियादों का जवाब दे सकता हूँ, तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, और ना ही तुम जो है आज मेरी मदद कर सकते हो, आज ना मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ और ना ही तुम मेरे कुछ काम जो है वो आ सकते हो। और इन सारी बातों से क्या बात पता चलती है कि शैतान जो है उस दिन जो है बिल्कुल अलग हो जाएगा, और क्या करेगा, कहेगा कसूर तुम्हारा अपना है, ये जो है ना फला तलूमुनी वलूमु अनफुसकुम, कि तुम्हारे पास अकल थी, दिमाग था, तुमने पैगंबरों की दावत को जो है वो क्यों ठुकरा दिया, हुज्जत जो थी, दलीलें जो थी, उनसे तुमने काम क्यों ना लिया, तुम मेरे पीछे क्यों लग गए, मैंने तो बस एक दावत ही दी थी। आप यूं समझें, दुनिया में भी लोग अगवा करते हैं ना, बच्चे को एक कैंडी, एक मिठाई, और बहुत सी लड़कियां घरों से भाग जाती हैं, लड़के जब मिलते हैं इसको आज की जब चलती है तो उसको सबज बाग दिखाते हैं कि वो जन्नत नजीर घर में तुम्हें लेके रखूंगा, वो मरी चला जाऊंगा, और वो नियाग्रा फॉल, और फिर देखना कैसी जो है वो जो है वो तुम्हें तुम्हें तुम्हारे हाथों को कंगन दूंगा, और तुम तो परी हो, तुम तो हूर हो, तुम तो खूबसूरत हो, और फिर लड़कियां क्या करती हैं, घर से जेवर बांधती हैं, वालदैन को भी नहीं बताती, पैसे जमा करती हैं और निकल जाती हैं, 2-4 दिन जो है वो उसके साथ गुजार कर फिर उसको धक्के दे के बाहर निकाल देता है, और वही लड़कियां फिर रोते हुए अपने माँ के पास आती हैं। और मोहब्बत की शादियां कितनी कामयाब होती हैं, ज्यादातर जो है वो नाकाम होती हैं, थोड़े दिनों में ही वो वही आदमी वो कहता है निकाह भी नहीं करता। बहुत से केस, एक लड़की, कई लड़कियां ऐसी जिनसे जो है वो आपका भी सामना हुआ होगा, और आप अखबारों में और जो है वो कहानियां मुख्तलिफ किताबों में पढ़ते होंगे, खुद मुझे भी ऐसे लोगों से मिलने का इत्तफाक हुआ कि, और बाज माएं वो रो रही थी कि हमारी मतलब बच्ची ने ऐसा किया और अब उसके उसको घर से निकाल दिया है, मैं तो माँ हूं ना, मैं उसके लिए दरवाजा ना खोलूं तो क्या करूं, लेकिन बाप और भाई नहीं अब उसको आने देते, वो कहते हैं कि कत्ल कर देंगे कि ये घर से निकली क्यों थी ना। तो दुनिया में भी धोखे और फ्रेब में आ जाते हैं ना, और थोड़े दिनों बाद ही पता चल जाता है ये तो सारा धोखा था, और वही आदमी ये कहता है कि जो जो तू अपने माँ बाप की ना बन सकी तो मेरी क्या बनेगी, है ना। तो ये है सारी बातें कि दुनिया की मिसालों से ही ये बात जो है वो समझनी चाहिए कि वो बच्चे जो घर से स्कूल चले जाएं और बाहर जाकर खेलते रहें और फिर उसके बाद फेल हो जाएं और फिर अपने दोस्तों को ब्लेम करें कि तुम लोगों ने हमें ये बताया था और अगर तुमने ऐसा ना किया तो कहते जाओ जाओ ये तुमने अपनी मर्जी की थी, तुम हमारे पीछे थोड़ी चले थे, दुनिया में भी कोई कहता नहीं है कि आओ अच्छा अब हम तुम्हें पास करवा देते हैं, अच्छा तुम्हारे वालदैन की डांट हम ले लेते हैं, अच्छा चलो हम प्रिंसिपल के पास जाते हैं, हमारी वजह से इन्होंने ये गलत काम किया। लड़के कहते हैं हाँ ये शीशा है इसमें पत्थर मारो, शीशा टूट गया, उसके बाद जब उसको अरेस्ट कर लिया जाता है तो फिर वो कहते हैं कि हमने यही तो कहा था कि मारो, अब हमने जबरदस्ती थोड़ी कहा था कि पत्थर मारो, है ना। तो दुनिया में भी जो दावत देने वाला बुराई की वो साइड पर हो जाता है, बिल्कुल इसी तरह से शैतान जो है लंबी तकरीर उस वक्त करेगा और ये कहेगा कि ना मैं तुम्हें अजाब से निकलवा सकता हूँ, ना अल्लाह के अजाब से बचा सकता हूँ, तुम्हारी क्या मदद करूं, ना तुम मेरी कर सकते हो ना मैं तुम्हारी कर सकता हूँ, सब हम बेबस हैं इस वक्त। इन्नी कफर तू बिमा अशरक तुमूनी मिन कबल, क्या कहेगा, इन्नी कफर तू, मैं इनकार करता हूँ, शैतान कहेगा मैं तो इनकार करता हूँ, बिमा अशरक तुमूनी, उनके साथ या था जो गिर चुका है, हरफे इल्लत गिरते हैं कि तुमने जो है इससे पहले मुझे जो खुदाई में शरीक बना रखा था क्या है, इन्नी कफर तू, मैं इससे बरी जिम्मा हूं, तो मुझे क्या, तुमने मेरा कहना माना और मेरी अताक की, मैं इससे बरी जिम्मा हूं। इन ज़ालिमीन लहुम अज़ाबुन अलीम, ऐसे जालिमों के लिए दर्दनाक सजा यकीनी है। तो यहाँ पे बड़ा इबरतनाक जो है वो मकालमा सुनाया है कुरान में इन आयतों में, कि आखरत में कुफार में कुफर और शिर्क और निफाक में वो लोग जो लीड करते हैं और वो जो उनको आंखें बंद करके फॉलो करते हैं, तो आपस में कोई किसी की मदद नहीं कर सकेंगे, और वहां पे तो अल्लाह ताला होंगे और फिर इंसान के अमलों की, अपने अमलों की जो है ना वो क्या होगी, जजा या सजा होगी। وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ، ایک طرف اللہ تعالیٰ دوزخیوں کا انجام بتاتے ہیں عذاب علیم، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ اپنے ایمان لانے والوں کا اور پیغمبروں کی اطاعت کرنے والوں کا، اللہ پر ایمان لانے والوں کا ذکر کرتے ہیں۔ وَأُدْخِلَ، اور داخل کر دیے گئے، یہ بھی جو ہے ادخلا یہ جو ہے وہ مجہول ہے، اور یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کیا بات بتا رہے ہیں کہ داخل کر دیے گئے وہ لوگ، ہے نا، وہ لوگ جو ایمان لائے تھے اور جنہوں نے عمل کیا تھا۔ اور یاد رکھیں کہ ایمان بغیر عمل صالح کے قابل قبول نہیں ہے، اور عمل صالح بغیر ایمان کے، دو چیزیں بہت اہم ہیں جو جنت میں انسان کو لے جا سکتی ہیں، اور وہ کیا ہے، ایک ایمان اور دوسرا عمل صالح۔ اب کافر ایمان نہیں لاتے اور عمل اچھے کرتے ہیں تو بھی جنت میں داخلہ نہیں، اور اگر مسلمان ایمان لے آئیں اور عمل اچھے نہ کریں، جیسے عبداللہ بن ابی، ایمان تو لایا تھا نا لیکن جو ہے وہ ساست نفاق تھا، نفاق میں مبتلا تھا، تو منافق کہاں پہ جائیں گے، جہنم کے سب سے نچلے درجے میں۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ایمان اور عمل صالح اختیار کرنے والے جنت میں داخل کر دیے گئے۔ کتنی خوبصورت ہے یہ خوشخبری، کتنی اچھی ہے یہ خوشخبری، اور جنت بھی کیسی، جنات تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، بہت سی نہریں جو دودھ کی ہیں، جو شہد کی ہیں، اور وہ نہریں جو ایسے پانی کی ہیں، ایسی شراب کی ہیں جس کا پانی کا ٹیسٹ بدلا نہیں ہوگا، جس میں تفن اور بدبو نہیں ہوگی، اور نہریں جو ہیرے جوہرات اور موتیوں کے ساتھ، وہ نہریں جن کی مٹی مشکی ہے، حدیث اس کی تفصیلات بیان کرتی ہیں، نہر نہیں نہریں ہیں، کہیں اللہ تعالیٰ اس کو سلسبیل کہتے ہیں، کہیں تسنیم کہتے ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، بإذن ربہم، اپنے رب کی اجازت سے، اتنی خوبصورت جنت میں ان کا داخلہ ہو جائے گا۔ اور لوگ خوش ہوتے ہیں کہ میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا، میک یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا، ہے نا، اور لوگ کیا کہتے ہیں کہ برانک سائنس میں داخلہ مل گیا، یعنی جو اسپیشل ہائی اسکول ہے جس میں گفٹڈ بچے جاتے ہیں، اگر اس کلاس میں یا اس اسکول یونیورسٹی میں داخلہ مل جائے تو لوگوں کی جو پاؤں ہیں وہ زمین پر ٹکتے نہیں ہیں۔ پنجاب میں، پورے پنجاب میں سب سے بیسٹ یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی، پورے پنجاب کی ترین جو ہے وہ پاکستان میں پنجاب یونیورسٹی میں آتی ہے، بڑا ہائی میرٹ، اور جس کا بھی پنجاب یونیورسٹی میں داخلہ ہو جاتا تھا تو بڑے شان و شوکت سے، فخر سے گردن اوپر کر کے لوگ کہتے تھے کہ ہم نے ایم اے کیا، اتنا نہیں بتاتے تھے، پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے کیا۔ میڈیکل میں داخلہ اگر کے ای میں ہو گیا تو کے ای جو ہے نا، اس سے جو ہے نا ہم نے ایڈمیشن، وہاں پہ ہم نے ایڈمیشن لیا، اور وہاں مجھے میرٹ پہ میرا نام آیا، اور مجھے میں ڈاکٹر بن گئی، میں ڈاکٹر بن گیا۔ تو ساری جگہوں سے بہترین جگہ، ساری منزلوں سے بہترین منزل جنت ہے، اور یہ ملے گی ایمان اور عمل صالح کے نتیجے میں، اور بإذن ربہم، جن کے عملوں کو اللہ قبول کر لے گا۔ پوری چھانٹی ہوگی، چھلنی میں جیسے چھانتے ہیں نا کسی چیز کو، تو سب چیزوں کا پورا اندازہ کر کے کہ عمل تو اچھے ہیں لیکن نیت میں اخلاص تھا، کہ اس میں حسد تو نہیں تھا، اس میں بغض تو نہیں تھا، اس میں شرک تو نہیں تھا، اس میں کفر تو نہیں تھا، ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ جب اجازت دے دیں گے تو جنت میں چلے جائیں گے، और अगला जुमला बड़ा खूबसूरत है, तहैयातुहुम फीहा सलाम के, और वहां उनका इस्तकबाल सलामती की मुबारकबाद से होगा। तो यहाँ पे जो है ये बड़ी अहम बात है कि तहैयातुहुम, तो ये जो तहैया है इससे क्या मुराद है कि वहां पे वो आपस में जो है वो एक दूसरे को सलाम कर रहे होंगे। क्यों? तहिया के मानी उम्र लंबी होने की दुआ देने के भी है, और अरबी जबान में ये लफ्ज जो है किसी को वेलकम करने के लिए या इस्तकबाल के लिए भी बोला जाता है कि जब लोग आपस में एक दूसरे के आमने सामने हों तो उस वक्त जो है वो तहिया तुम फीहा सलाम है ना, हया कल्ला कहना या सलाम कहना, तो उस वक्त भी ये बोला जाता है। तो इसी तरह से इसका फिर तर्जमा क्या बनता है कि इस्तकबाल, कि वहां उनका इस्तकबाल जो है वो सलाम के साथ होगा, तहिया के साथ होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ये बात बताते हैं कि इतना खूबसूरत मंजर होगा जन्नत में कि जन्नत में दाखला ही बड़ी बात है कि किसी को जन्नत में एडमिशन मिल जाए, और जन्नत में एडमिशन जो है वो नंबरों से, डिग्री से, और सिटीजनशिप से, अमेरिका की हो, कनाडा की हो, बर्तानिया की हो, किसी भी मुल्क की हो, उससे नहीं वहां पे दाखला मिलता। कोई पासपोर्ट है उससे नहीं मिलता, बल्कि किससे दाखला मिलता है? ईमान और अमले सवाले की डिग्री से। और फिर उसके बाद जो है इतना ही नहीं कि उसमें वो हमेशा रहेंगे, बल्कि जन्नत में पहले ही सलामती है और मजीद सलामती के साथ उनका जो है वो इस्तकबाल किया जाएगा। और सूरत रात जो है उसमें भी आप जो हैं ये बात पढ़ चुकी कि अल्लाह ताला जो हैं जो जन्नती हैं उनके उनके लिए क्या खुशखबरी होगी, और कैसे वो एक दूसरे को जो है वो सलामती सलामती जो है वो उनकी जबानों पर होगा और एक दूसरे को सलामती की वो दुआ जो है वो दे रहे होंगे। तो यहाँ पर भी कुरान मजीद में अल्लाह ताला बार बार जो है ये बात बताते हैं कि जो जन्नती लोग हैं वो कितने मेरे जो हैं वो बेहतरीन लोग हैं, मेरे अतात गुजार हैं, और कितना मैं उनको जो है वो अपने इनामात से जो है वो नवाजूंगा। तो हमें सबको ये फिक्र करनी चाहिए कि फिर हमारा अंजाम और हमारा हाल जो है वो क्या होगा। अब दो लोगों यानी दो तरह के किरदार, दो तरह के अंजाम, एक अजाबुन अलीम और एक जन्नातिन तजरी मिन तहती हल अनहार। अब इसके बाद जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो मिसाल देते हैं, कलमा तैयबा की मिसाल और फिर कलमा कुफर की मिसाल। और जो है वो कलमा तैयबा की मिसाल जो है वो शजरे तैयबा से देते हैं। क्या फरमाया? अलम तर कैफा, क्या तुमने नहीं देखा, क्या तुम देखते नहीं हो? दरब अल्लाहू, कि अल्लाह ने जो है वो दी मसलन मिसाल, कि अल्लाह ने मिसाल दी कलेमतन तय्यबतन, पाक कलमे की, कलमा तय्यबा की मिसाल जो है वो अल्लाह ने किससे दी, क्या तुमने नहीं देखा? का शजरतिन तय्यबतिन, गोया के दरख्त है तय्यब पाक, असलुहा साबित, के जिसकी जो जड़ है वो गहरी है, असलुहा साबितुन, वो जो तैयब घर है, जो तैयब दरख्त है उसकी जड़ जमीन में गहरी है, साबित है, उसको एक करार है, वह फरउहा, और उसकी जो शाखें हैं फिस समा, आसमान तक पहुंची हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है कलमा तैयबा के मानी वो कलमा जो बच्चा जूं ही छोटा सा होता है ना, जूं ही जबान खोलता है तो सिखा देते हैं उसको, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम ये कलमा सिखाते हैं ना, तो ये कलमा तैयब है। इसके मानी है पाकीज़ा बात के, मुराद क्या है? कौले हक, और ऐसा अकीदा जो सहले है। और ये जो कलमा तैयब है इससे मुराद क्या है? तौहीद का इकरार, नबियों का इकरार, आसमानी किताबों का इकरार, आखरत का इकरार और कुरान मजीद का इकरार, और उसके साथ जो है यानी फरिश्तों का, तकदीर का, सब चीजों का इकरार, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने का यही मतलब है कि इंसान जो है वो अल्लाह ताला को माने तो अल्लाह ताला की तमाम अहकामात को माने, और कलमा तैयब की मिसाल जो है गोया के शजरतिन तैयबतिन की है। और ये शजरतिन तैयबतिन क्या है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बुखारी की हदीस है जिसमें कलमा तैयबा की मिसाल जो है एक शजरा तैयबा से दी गई है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि एक दफा हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, बताओ वो दरख्त कौन सा है जिसके पत्ते नहीं गिरते? मुसलमान की मिसाल उस दरख्त की सी है, और ये भी नहीं होता, और ये भी नहीं होता, और ये भी नहीं होता, ना तो इसका फल खत्म होता है, और ना इसका दाना मादूम होता है, और ना इसका नफा जाया होता है, और वो हर वक्त फल देता है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, उस वक्त मेरे दिल में ख्याल आया वो खजूर का दरख्त है, मगर जब मैंने देखा कि अबू बकर और उमर जैसे बुजुर्ग खामोश बैठे हैं रजी अल्लाह अन्हुमा, तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब देना मुनासिब ना समझा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही बता दिया कि वो खजूर का दरख्त है। जब हम इस मजलिस से उठ आए तो मैंने अपने वालिद से कहा, कौन थे इनके वालिद? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान अल्लाह की कसम मेरे दिल में ये बात आई थी कि वो खजूर का दरख्त है। उन्होंने कहा, फिर तुमने कह क्यों ना दिया? मैंने कहा, आप सब खामोश रहे तो मैंने आगे बढ़कर बात करना मुनासिब ना समझा। मेरे वालिद कहने लगे, यानी हजरत उमर रजी अल्लाह अपने बेटे को कहने लगे, अगर तुम कह देते तो मुझे इतना इतना माल मिलने से ज्यादा खुशी होती। ये बुखारी की हदीस है। तो क्यों उनको इतनी खुशी होती कि मेरे मेरे बेटे को माशाल्लाह ये इल्म है आता ना? तो असल खुशी किस चीज पर होनी चाहिए? इल्म, और इल्म नाफे, और उसमें बेहतरीन इल्म जो है वो कुरान का इल्म है। हुआ खैरुम मिम्मा यजमाउन, है ना? सूरत यूनुस से भी हमें ये बात पता चलती है कि दुनिया में इंसान जो कुछ जमा करता है उनमें सबसे बेहतरीन जो है ना वो कुरान है, जिसके जमा करने पर खुशियां मनानी चाहिए। फबिजाली का फल यफराहू। तो अब इसीलिए हजरत उमर रजी अल्लाह ने ये बात कही। तो अब आप देखिए कि इस हदीस से भी जो बात हमारे सामने आती है कि शजराए तैयबा जो है इससे मुराद खजूर का दरख्त है, है ना? और जो खजूर का दरख्त है इसकी क्या सिफात है कि खजूर का जो दरख्त है ये हर मौसम में फल देता है। इसके दरख्त का तना बुलंद और मजबूत होता है, इसकी जड़ें दूर तक जमीन में गई भी होती हैं, इसका फल हर हाल में हर वक्त खाया जाता है, और जब ये पकता है तो पकने की जो इसकी, यानी कच्ची खजूर, पक्की खजूर, फिर खजूर की चटनी, फिर खजूर का मुरब्बा, फिर जो खजूर है अचार उसका, और हत्ता के खजूर जो है इसकी स्वीट भी बनती है, उसका हलवा वगैरह भी, है ना? और वैसे भी वहां पे अहले मक्का जो थे खजूर को जो है वो खाने के तौर पे उसका जखीरा करते थे और उसका जो है वो इस्तेमाल करते थे। और इस दरख्त का गुदा भी खाया जाता है, इससे मीठा रस भी निकाला जाता है, इसके जो पत्ते हैं उससे मुफीद चटाइयां बनती हैं, इसकी गुठली जो है वो जानवरों के लिए चारा है, और जो दूसरे फल हैं वो क्या होते हैं कि खास मौसम में आते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं। और आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो इसकी सिफात बताई गई है, पहली सिफत क्या है इसकी, है ना? कशजरतिन तैयबतिन, खजूर के दरख्त की पहली सिर्फ तैयबा है, नंबर वन कि वो पाकीजा है, इसकी उम्दगी, शक्लो सूरत, फल फूल, जायका और मीठा होना, खुशबूदार होना, उसके लिहाज से है तैयबा। और दूसरी उसकी खूबी क्या है, असलूहा साबित, कि इसकी जड़ें जमीन में खूब गहरी हैं, मुस्तहकम है, इस कदर मजबूत दरख्त है कि तवील कद होने के बावजूद उसकी यानी उस पूरे उस मजबूत तने का जो उस कद का जो दरख्त है उसका बोझ वो जड़े जो है वो बर्दाश्त करती हैं। और तीसरी उसकी खूबी क्या है, वफरउहा फिस समा, कि इसकी शाखें आसमानों में बहुत बुलंदी तक चली गई हैं, लिहाजा इसे जो फल हासिल होगा वो हवा की जो आलूदगी है या गंदगी है उसके जरासीम से वो पाक होता है। आपको पता है ना, जो दरख्त जितना बुलंदी पर हो वो उतना ही जमीन की आलूदगी से पाक होता है। और चौथी चौथी उसकी खूबी क्या है, तूती उकुलुहा, के वो लाता है फल, वो फल दे रहा है अपना, कुल्लो ही निम बिज़्ने रब्बिहा, हर आन वो अपने रब के हुक्म से अपने फल दे रहा है। इसका ये मतलब है ये आम दरख्तों की तरह नहीं है बल्कि हर मौसम में पूरा फल देता है। और ये जो खजूर के दरख्त की ये सिफात है ये किसी और दरख्त में जो है वो नहीं पाई जाती। तो दरअसल जो है वो दरख्त को हदीस में शजरे तैयबा कहा गया, और मुमकिन है कि अल्लाह के इल्म में कोई और भी ऐसा दरख्त हो जिसकी ये सिफात जो है वो हो, लेकिन यानी हदीस ने हमें क्या बताया कि इससे मुराद खजूर का दरख्त है। और गोया के कलमा तैयबा जो है वो का शजर तिन तैयबा तिन के हम मिसल है, और अरबों कि हाँ तो खजूर ही का फल सबसे ज्यादा होता है ना। अच्छा, अब यहां पर जो है, अब कलमा तैयबा जो है उसके फिर क्या समरात हैं, यानी जो समरात खजूर के दरख्त की हैं, जो ये चार उसकी निशानियां और अलामतें, यही कलमा तैयबा की भी हैं। अब कलमा तैयबा के समरात को देखें कि जिसकी कोई फसल फल से खाली नहीं होती है ना, बहार हो के खिजा ला इलाहा इल्लल्लाह, कि जब कलमा किसी मोमिन के दिल में रच बस जाता है, उसकी जड़ें उसके दिल में पेवस्त हो जाती हैं, तो पूरी जिंदगी को इस कलमे के तकाजों के मुताबिक ढाल लेता है। फिर फल कैसे लगते हैं उस कलमे पर, उस जब बीज इतना अच्छा होता है ईमान का, तो फल लगते हैं अमाले सवाले के। अच्छा, फिर अमाले सवाले के जो फल हैं वो क्या फायदा देते हैं, सिर्फ उसकी जात को नहीं, इर्द गिर्द का मुआशरा जो है वो भी उस फल से फैजयाब होता है, बुलंदी तक जाता है ना। और फिर ये अमाले सवाले जो हैं ये नहीं कि मुआशरा फायदा उठा रहा है बल्कि आसमान की बुलंदियों तक पहुंचते हैं। अल्लाह ताला खुद कुरान में कहते हैं, इलेही यस अदुल कलिमुत तय्यिबु वल अमलु सालिहु यरफाउ, पाकीजा कलमा अल्लाह की तरफ चढ़ता है और अमले सवाले उसे चढ़ाने का सबब बनते हैं। तो यानी गोया के वो ऐसा, वो जो अमले सवाले हैं इतना फायदा देते हैं कि उसकी वजह से जो है अल्लाह ताला उसकी नेकियों को कबूल करता है और अल्लाह ताला उसके दर्जात जो है वो उसको बढ़ाता चला जाता है ना। तो इस हदीस इससे भी फिर हमें क्या बात पता चलती है कि कलमा तैयबा जो है ये ऐसा कलमा है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ता कयामत ये बरकरार रहेगा, असलूहा साबित, हमेशा दुनिया में जो है इसका नाम रहेगा। बातिल के तूफान आंधियों के झक्कड़ आएंगे लेकिन कलमा तैयबा इस्लाम का जो पौधा है ना उसको वो हिला नहीं सकते। और ये पौधा लगता कहाँ है, मोमिन के दिल में, और मोमिन के दिल में जितनी जड़ें इसकी मजबूत होती हैं तो उतना ही जो है वो तनावर दरख्त निकलता है, उतने ही फल फूल जो है वो आते हैं। तो इससे ये बात पता चलती है कि दरअसल यानी कलेमतन तो ये बतन जो है वो इससे मुराद क्या है, मुफस्सरीन ये कहते हैं कि इससे मुराद जो है वो तौहीद है, इससे मुराद जो है वो मार्फत इलाही की बातें हैं, इससे मुराद ईमान और ईमानियात हैं, कुछ कहते हैं कुरान है, कुछ कहते हैं हमदो सना तस्बीह तहलील सच बोलना, यानी सारे मानी इसके अंदर जो है वो पाए जाते हैं। तो तूती उकुलहा ही कुल्ल ही निम बिइज़्नि रब्बिहा, तो कलमा तैयबा जो इस्लाम पर चलने वाले हैं ना, मुश्किल हो आसानी हो हर तरह के हालात में वो इस्लाम पर अमल करते हैं, और इस्लाम जो है वो हर तरह के मौसम में जो है वो फलता फूलता है। वयद्रिबुल्लाहुल अम्साला, और अल्लाह मिसालें बयान करता है लोगों के लिए, किसके लिए, लिन्नासी, इंसानियत के लिए, लअल्लहुम यतज़क्करून, शायद के वो इससे सबक लें। वह मसलू कलेमतिन खबीसतिन, और कलमा खबीसा की मिसाल, और कलमा खबीसा जो है यानी ये कलमा तैयबा की जिद है, जिसके मानी ये हैं कि हर वो बात, हर वो अकीदा जो बातिल है, जो काफिरों का, देहरियों का या बुत परस्तों का है, यानी हर वो ऐसा नजरिया या ऐसी बात जो कि बातिल है, तो उसको कलमा खबीसा यानी गंदी बात कहते हैं। तो अल्लाह कलमा कलेमा तिन खबीसा तिन की मिसाल किसे देते हैं, का शजरा तिन खबीसा थी, गोया के एक जो है वो नापाक दरख्त है, बदजात दरख्त है, निज तुस्सत मिन फौकिल अर्दी, जिसको उखाड़ फेंका जाता है जमीन के ऊपर, जमीन की सतह से उखाड़ फेंका जाता है, मा लहा मिन करार, उसके लिए कोई इस्तेहकाम नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि कलमाए खबीसा जो है ये क्या है, गोया के इसकी जड़ें जमीन के अंदर गहराई में होती ही नहीं, ऊपर ही ऊपर होती हैं, हवा का एक भी तेज झोंका आए तो इसको उखाड़ कर परे फेंक देता है। जैसे जो है वो हदीस से पता चलता है कि शजरे खबीसा जो है ये इंद्रान का पौधा है, जैसे पंजाबी में तुम्मा नहीं जैसे कहते, तुम्मा, जिसका फल सख्त कड़वा होता है, और निजामे बातिल जो है, कुफर जो है, इसके असरात भी तो कड़वे ही है ना, तो कड़वे जो कड़वा बीज, कड़वा पौधा तो कड़वे फल लाएगा। तो कलमाए बातिल जो है उसे क्या है कि माशरे में बदअमनी है, रिश्वत है, चोरी है, डाका जनी है, एक दूसरे के हकूक पूरे नहीं किया जाते है ना, तो इलाज करना तो दूर की बात है, कोई भी जो है वो फायदा नहीं देता। तो जितने भी इज्म आए हैं, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, इंसान के बनाए हुए, बुद्ध मत है, हिंदुइज्म है, तो तिर्मिजी, निसाई, इब्ने हमान और हाकिम ने हजरत अंस रजी अल्लाह अन्हु से इसको रवायत किया कि रसूल अल्लाह ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शजरतुन तैयबतुन से मुराद खजूर का दरख्त है, और शजरतुन खबीसतुन हंजल का यानी इंद्रान का जो है वो दरख्त है। तो इससे जो है हमें क्या बात पता चलती है कि जो काफिर हैं या कुफर है, तो उसकी मिसाल जो है वो शजरे खबीसा की सी है, कि जड़ें भी जमीन के अंदर नहीं है और जैसे झाग की तरह बैठ जाता है, यानी इसकी कोई भी हैसियत नहीं है। तो गोया कि इन दोनों मिसालों के जरिए से अल्लाह ताला मोमिनों के अमल और काफरों के जो अमल है ना उनको बता रहे हैं कि अव्वल तो जो मोमिन के अमल हैं वो बड़े मजबूत हैं, पुख्ता हैं, पायदार हैं, बड़े अच्छे उनके असरात हैं, खुशबू कितनी अच्छी होती है, मोमिन दुनिया से चला भी जाता है लोग नेकी याद करते हैं ना, और ऊपर आसमान पर बुलंदियों पे जाके अल्लाह के यहाँ कई दर्जे, और काफिर के अमल जो शजरे खबीसा की तरह हैं कि गंदगी, उसके फल फूल जो हैं, यानी जैसे इंद्रायन के दरख्त को अगर हाथ लगाएं तो क्या होता है कि हाथों को कांटे लगते हैं, जो भी झाड़ झंकार होते हैं हाथों को कांटे लगते हैं, चखें तो जबान में तलखी है ना, और ना वो साया देती हैं झाड़ियां कांटों वाली, ना गिजा का बायस बनती हैं, पास बैठ जाएं तो बू आएगी। तो गोया के ये जो इस्लाम को छोड़कर लोग जो अमल करते हैं, जो इज्म इख्तियार करते हैं, तो ये उसकी मिसाल है। तो गोया के इससे फिर ये बात पता चलती है कि जो कलमा तैयबा है ना, जो लोग मोमिन हैं, जब वो मरते हैं तो भी जो है वो असलुहा साबित व फरुहा फिस समा, के मौत के वक्त भी वो अल्लाह उनको कलमा नसीब करता है, कब्र में वो चले जाते हैं तो उस वक्त भी अल्लाह जो है वो जो फरिश्तों के सवाल हैं उन पर वो साबित कदम उनको रखता है। और आपको पता है ना कि जो शख्स भी जो है वो कब्र में जाता है तो फरिश्ते उनसे क्या सवाल पूछते हैं, मन रब्बू का, मा दीनू का, मन नबीयू का, तो जो दुनिया में साबित कदम रहते हैं तो वहां पे वो कहते हैं कि रब हमारा रब्बी अल्लाह व दीनी अल इस्लाम व नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये है इसका मतलब कि गोया के वो कब्र में जाकर भी जो है वो इस बात को भूलते नहीं है। तो ये है बात के मा लहा मिन करार, के कल मैं बातिल को कोई करार नहीं है। युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीन आमनू, ईमान लाने वालों को जो है वो अल्लाह ताला साबित करता है। गोया कि ईमान लाने वालों को अल्लाह एक कौले साबित की बुनियाद पर, युसब्बितुल्लाह अल्लाह उनको साबित करता है, अल्लज़ीना उन लोगों को, आमनू जो ईमान लाए, बिलकौल साबिती कौले साबित की बुनियाद पर, फिल हयाती दुनिया दुनिया की जिंदगी में, व फिल आखिरा और आखिरत में भी। मुफस्सरीन ने इससे क्या मुराद लिया है, यानी ये तो आपको पता चल गया ना कि कौले साबित से मुराद कलमा तैयबा है, तौहीद है, कुरान है, इस्लाम है। तो दुनिया में साबित कदमी और आखिरत में भी साबित कदमी, इससे क्या मुराद है कि जो भी इस्लाम के मुताबिक जिंदगी बसर करता है उसकी सीरत की मजबूती, उसके इखलाक और किरदार की जो पायदारी है ना, जमाने की गर्दिशें उसको मुतजलजल नहीं करती, उसके दिल और सुकून को जो है वो हर हाल में इत्मीनान रहता है कि हत्ता कि वो सर कटवा देता है लेकिन सर को झुकाता नहीं है। और यानी दुनिया में भी कलमा तैयबा पर अमल करने वाले, इस्लाम पर अमल करने वाले जो है अल्लाह ताला उनको ये समराद देता है कि वो पहाड़ों की तरह मजबूत होते हैं, वो किसी और इज्म को कबूल नहीं करते। गोया कि मोमिन किसी हाल में घबराता नहीं है, मुसीबतों में मुश्किलों में अल्लाह पर भरोसा रखता है, साबित कदम रहता है, तो सब कुछ बर्दाश्त कर जाता है। और वफिल आखिरा, बाज लोग जो हैं वो आखिरत से मुराद क्या लेते हैं कि जो ही इंसान मरता है ना उसकी आखिरत शुरू हो जाती है, मौत का वक्त, कब्र का वक्त, फिर हशर का मैदान, फिर उसके बाद जो है वो मुनसिरात और हिसाब किताब, यानी हर मौके पर उसको साबित कदमी जो है वो नसीब होगी। इस सिलसिले में हमें अहदीस भी मिलती हैं, जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान से जब कब्र में सवाल होगा तो वो कहेगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो कौल साबित जो है ना, कौल साबित, इससे मुराद यही है। बुखारी की ये रवायत है और इसी तरह तिर्मिजी की रवायत के ये अल्फाज हैं कि जब कब्र में उनसे पूछा जाएगा कि तेरा परवरदिगार कौन है, दीन क्या है, नबी कौन है, तो उस वक्त वो सही सही जवाब देता है ना। तो दुनिया में जो शख्स जो है वो साबित कदम नहीं है तो वो मौत के वक्त या कब्र में जो है वो कैसे साबित कदम जो है वो हो सकता है। और दफन के बाद मैयत के लिए दुआ भी की जाती है ना, मैयत के को जब कब्र में रख दिया जाता है तो दुआ है ये कि अल्लाहुम्मा सब्बित हु बिल कौल साबित, ये अल्लाह तू इसको कौले साबित में साबित कदम रख। और इससे मुराद क्या है, कलमा तैयबा। और ये बड़ी मशहूर हदीस है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब आदमी कब्र में रखा जाता है और इसके साथी वापस लौटते हैं तो बिला शुबा वो इनके जूतों की आवाज सुनता है। इस वक्त इसके पास दो फरिश्ते आते हैं जो उसे उठाकर बिठा देते हैं और वो कहते हैं कि ये शख्स जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो था तो तुम्हारा उसके बारे में क्या अकीदा था, तुम क्या अकीदा रखते थे, अगर वो ईमानदार हो तो कहता है मैं गवाही देता हूं कि वो अल्लाह के बंदे और इसके रसूल हैं। फिर इससे कहा जाता है तू दोजख में अपना ठिकाना देख ले, अल्लाह ताला ने इसके बदले तुझको जन्नत में ठिकाना दिया, यानी अगर तुम ये गवाही ना देते तुम्हें दोजख में क्या मिलता, और अल्लाह ताला ने तुम्हें ये जो तुमने गवाही दी है ना इसके बदले तुझे जन्नत में जो है वो जन्नत का ठिकाना दिया। तो वो दोनों ठिकानों को एक साथ देखेगा, एक तरफ जन्नत दिखाई जाती है, एक तरफ उसको जहन्नुम दिखाई जाती है। हजरत कतादा कहते हैं कि हम में से ये भी बयान किया गया कि कब्र इसकी कुशादा कर दी जाती है। फिर हजरत अनस रजी अल्लाह की जो हदीस है उसमें मिलता है कि अगर वो मुनाफिक या काफिर है तो इसे पूछा जाता है कि इस शख्स के बारे में तू क्या कहता था, वो कहेगा मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, हाय हाय मैं नहीं जानता। तो जो लोग कहते थे कि इससे कहा जाएगा कि ना तू खुद समझान और ना खुद पढ़ा, तो फिर लोहे के हंटरों से ऐसी मार पड़ेगी को बिलबिला उठेगा और इसकी चीखों पुकार जिन्हों इंस के सिवा आसपास की तमाम चीजें सुनती हैं। ये बुखारी की रवायत है। और इसी तरह जो है वो एक और हदीस से ये बात पता चलती है कि जब मैयत को कब्र में उतारा जाता है तो इसके पास दो फरिश्ते आते हैं जिनका रंग स्याह और आंखें नीली होती हैं, नीलगू, एक को मुनकिर और दूसरे को नकीर कहा जाता है। वो कहते हैं फिर वही उसी तरह के वो सवाल करते हैं जो है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है ना, और फिर जो है वो बाकी जो अकायद है उसके बारे में। तो अगर वो साबित कदम रहता है तो फिर 70-70 गज तक कब्र खुली कर दी जाती है रोशनी, और कहा जाता है तू उस तरह सो जा जैसे तू अपने घर वालों में सोया जाता था। जैसे कि एक हदीस में ये लफ्ज मिलते हैं कि उन्हें उसे कहा जाएगा सो जा जिस तरह दुल्हन सोती है जिसको नहीं जगाया जाता, मगर ज्यादा प्यारा लोगों का इसकी तरफ, यहाँ तक कि अल्लाह ताला इसको इसके सोने की जगह से जगाएगा। अगर मुनाफिक होगा तो फिर जो है वो यही जवाब देगा फरिश्तों को कि मैं नहीं जानता मैं नहीं जानता, यानी उसको किसी बात का जवाब ही नहीं आएगा। फिर उसको क्या जवाब देंगे फरिश्ते कि जमीन उसके लिए तंग हो जाएगी, कहा जाएगा जमीन सुकड़ जा, और जमीन इस तरह सुकड़ जाएगी जैसे कि पसलियां दूसरी पसलियों में सुकड़ जाती हैं, और फिर ये अजाब उस पर होता रहेगा। तो इस तरह हमें बहुत सी ऐसी हदीसें मिलती हैं जिससे ये बात पता चलती है कि जो साबित कदम रहते हैं, यानी दुनिया में भी साबित कदम रहे, कब्र में भी, और उसके साथ ही कयामत और आखिरत के दूसरे मराहिल में भी है। तो इससे क्या बात पता चलती है कि जो दुनिया में उठा और नमाज पढ़ी तो वही कब्र में भी नमाज पढ़ेगा ना। हदीस है ना वो वाली कि एक फरिश्ते उसको उठाएंगे हिसाब किताब के लिए, तो कहेगा कि ठहरो ठहरो मेरी असर की नमाज कजा होने वाली है, भले मुझे नमाज पढ़ लेने दो फिर मैं तुम्हें जवाब दूंगा। फरिश्ते कौन है, मेहमान है ना। लेकिन अब आप देखें हमारे मेहमान आते हैं तो हम तो सारी नमाजें कजा कर देते हैं क्योंकि मेहमानों ने आना होता है, कुछ उनकी तैयारी में कुछ उनके जाने की थकन में। लेकिन उन्होंने क्या किया, फरिश्ते आए हुए हैं हिसाब के लिए, लेकिन उनको इतनी आदत थी क्योंकि कौल इज साबित, एक उनके अंदर मुस्तकिल मिजाजी है। तो ये है कि सोचना चाहिए कि दुनिया में हम क्या कर रहे हैं, और दुनिया में जो शख्स जैसे अमल करता है तो बाकी मराहिल भी उसके मुताबिक ही हैं, या सजा है या जजा है, या कब्र जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा है या जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा। ये है कि आमनू बिल कौलि साबिति फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा व युदिल्लुल्लाहु ज़ालिमीना, और अल्लाह जालिमों को भटका देता है, व यफअलुल्लाहु मा यशा, और अल्लाह को इख्तियार है वो जो चाहे करे, और जो नाफरमान है तो उनके लिए क्या है कि अल्लाह की तरफ से जो है वो पकड़ है, और जो कलमाए खबीसा पर अमल करने वाले हैं तो वो गुमराह हो गए। फिर फरमाया वयफअलुल्लाहु मा यशा, ये अल्लाह को इख्तियार है जो चाहे, तो जो लोग जो चाहते हैं उसके मुताबिक अल्लाह ताला उनको उनके अमाल की सजा या फिर जजा देता है। फिर फरमाया अलम तरा इल्लल्लज़ीना बदलू नेमतल्लाहि कुफ्रं व हलु कौमहुम दारल बवार, तुमने देखा नहीं उन लोगों को जिन्होंने अल्लाह की नेमत पाई और उसे कुफराने नेमत से बदल डाला। तो ये कौन लोग मुराद हैं, किनके बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुमने इन लोगों को देखा नहीं। तो बुखारी की जो तफसीर है उससे ये बात पता चलती है कि कुफारे मक्का मुराद हैं। क्यों, ये वो लोग थे कि उन्होंने नेमत पाई पैगंबर की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, लेकिन उन्होंने इनकार किया है ना। तो अलम तुरा इल्लज़ीना बदलू नेमत अल्लाही, कि उन्होंने अल्लाह की नेमत को पाकर फिर बदल दिया, किसमें, कुफरन इनकार में, रसूल का इनकार कुरान का इनकार। वाहल्लू कौमहुम, और अपनी कौम को भी जो है वो उतार दिया। वाहल्लू कौमहुम, तो उन्होंने जो है वो अपनी कौम को ला उतारा, कहाँ ला उतारा, दारल बवार, हिलाकत के घर में। तो इससे मुराद ये है कि जब उन्होंने जो है इनकार किया, मक्का के सरदारों ने इनकार किया है ना, तो कौम को लेकर, अपनी कौम को लेकर मक्का के सरदार जो थे वो बदर के मैदान की तरफ चले, कौम को बदर के मैदान में ला उतारा। तो नतीजा क्या हुआ, खुद भी तबाह और उनको भी तबाह किया, खुद जंग की यानी अल्लाह के नबी का, अल्लाह के रसूल का, इस्लाम का, अल्लाह का इनकार किया। और ये है वाहल्लु कौमहुम दारल बवार, कि इसमें गजवा बदर की तरफ जो है वो इशारा है कि मक्का के लीडर सरदारों ने मुसलमानों से लड़कर अपने आप को भी हिलाक करवाया और आवाम को भी। तो ये नेमत की कदर ही ना की, इस्लाम की, प्यारे रसूल की है ना। तो जो कदर करता है तो वो क्या करता है, जाहिर है कि वो फिर जन्नती बन जाता है। जहन्नम यसलउनहा, ये जहन्नुम में दाखिल किए जाएंगे, व बेसल करार, और बदतरीन जाय करार है। तो कुफर और इनकार की वजह से दारुल बवार क्या हुआ कि वो जहन्नुम में उनका दाखला है और बड़ी ही बुरा जो है वो ठिकाना है। वजालू लिल्लाही अंदादा लियुदिल्लु अन सबीली, और इन्होंने अल्लाह के शरीक तजवीज कर लिए। और क्यों ये अल्लाह के साथ औरों को शरीक करते हैं, लियुदिल्लु अन सबीली, ताकि वो इन्हें अल्लाह के रास्ते से भटका दे। उल्तमत्तऊ फइन्ना मसीरकुम इलन नार, इनसे कहो अच्छा मजे कर लो, आखिरकार तुम्हें पलट कर जाना तो दोजख ही में है ना। तो गोया के जब नेमत को रद्द किया, कुफर किया, शिर्क किया, तो फिर क्या है कि जहन्नमी करार पाए। अब यहाँ पे जो है ना, ये आयत नंबर 30 जो है, इसमें डांटा जा रहा है अल्लाह ताला की तरफ से, उनको मलामत की जा रही है जो दुनिया में शिर्क करते हैं, कुफर करते हैं, कि आखिर ये कुफर और शिर्क करके दुनिया के जो मजे कर रहे हो कितनी देर, लौट के तो जहन्नुम में जाओगे ना। قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال۔ یہ آیت نمبر جو 31 ہے سورت ابراہیم کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک اور اہم حقیقت جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت جو ہیں مومنین کو نصیحت کرتے ہیں، ایک طرف کافروں کا حال بتایا، دوسری طرف مومنین مخلصین جو ہیں ان کو متنبہ کیا جا رہا ہے۔ کیا ان کو کہا جا رہا ہے؟ کہ پوری طرح بیدار ہو جاؤ۔ قل عبادی، اے میرے بندو، الذین، وہ میرے بندے، آمنو، جو ایمان لائے، تو اے میرے ایمان لانے والو کیا کرو؟ نماز قائم کرو، یعنی نماز ظاہری اور باطنی جتنی خوبیاں ہیں ان کے ساتھ صرف پڑھنی نہیں ہے بلکہ اس کو قائم کرنا ہے نا۔ نماز کے جو حقوق حدود ہیں پوری رعایت کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے، کوئی کمی بیشی نہیں کرنی۔ وَيُنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور خرچ کرو جو ہم نے تم کو دیا ہے۔ اور خرچ کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، کہ کھلے بھی خرچ کرنا ہے اور چھپ کر بھی۔ اب اہل ایمان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری روش کافروں کی روش سے مختلف ہونی چاہیے، نماز بھی قائم کرنا اور اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا، کبھی خفیہ کبھی اعلانیہ، ہے نا۔ جو فرائض ہیں وہ تو خفیہ، فرائض تو علل اعلان ادا کرنے چاہیے، لیکن جو نوافل ہیں وہ خفیہ طور پر۔ اسی طرح زکوٰۃ جو ہے وہ علل اعلان، اور جو صدقہ خیرات کیا جائے تو وہ خفیہ کیا جائے، لیکن اگر انفرادی طور پر ہم کسی کو دے رہے ہیں نا، اس کا اعلان نہ کریں۔ اجتماعی طور پر اگر ہم دے رہے ہیں کسی کام کے لیے، تو اس کا اعلان بھی کیا جا سکتا ہے تاکہ لوگوں کو اس کی ترغیب ہو۔ تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں ہر طرح سے خرچ کرتے ہیں، ہوتا ہے نا کہ کبھی چھپ کر کبھی اعلانیہ، ہر طرح سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور یہ کیوں کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، اور کیوں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور کیوں وہ ایمان لائے؟ اس لیے کہ من قبل، اس سے پہلے، ایات یا یومن، کے وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ ولا خلال، کہ جس میں نہ تو خرید و فروخت ہوگی اور نہ ہی کوئی دوستی جو ہے وہ کام آئے گی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا اہم اصول دیا ہے کہ یوم حساب میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ نماز، انفاق فی سبیل اللہ، نیکیاں بس اس دن کام آئیں گی۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے نا کہ خرید کر مشکل جو ہے نا اس سے نکلا جاتا ہے، یا پھر اور کچھ نہیں تو دوست وہ ہے جو مصیبت میں کام آئے، ایسا ہوتا ہے نا۔ لیکن وہاں پہ جو ہے کوئی کسی کے کام جو ہے وہ نہیں آئے گا۔ تو گویا کہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا جو ہے وہ خرچ کرنے کی جگہ ہے، دنیا جو ہے اس میں اللہ کے راستے میں دینا چاہیے، لیکن وہاں کچھ نہیں ہے۔ بین جو ہے یہ ذوی الاضداد میں سے ہے، خرید و فروخت دونوں کے لیے کام آتا ہے۔ تو اس دن جو ہے نہ خرید کر جو ہے وہ اللہ کی رضا یا جنت لی جا سکتی ہے، اور نہ ہی دوست۔ دنیا میں کوئی بھی کام نہ آئے نا، کچھ بھی نہ ہو، تو کوئی دوست ہی نکل آتا ہے کہیں سے، کوئی واقف نکل آتا ہے جو مشکل سے نکال دیتا ہے، تو وہاں پہ یہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ توجہ دلا رہے ہیں کہ اے لوگو، تم میری پکڑ سے بچو، اور توحید کے دلائل۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء، وہ اللہ ہی تو ہے जिसने पैदा किया आसमानों को और जमीन को, और आसमान से जो है वो पानी बरसाया। तो क्या मतलब है इसका कि लोगों, जिस रब ने ये सारे काम किए कि आसमान और जमीन की पैदाइश और बारिश का नाजिल होना, ये तुम्हारे बुतों ने, शरीकों ने तो नहीं किया, फिर तुम अल्लाह की बंदगी से कहाँ मुंह मोड़े जाते हो। وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ, तो आसमान से बारिश होती है तो क्या होता है, निकाल ले इस बारिश के जरिए से तुम्हारे लिए फल, समरात, तरह तरह के फल, रिज़्क़ल लकुम, तुम्हारे रिज़्क़ के लिए, तुम्हारे खाने के लिए। तो अब अल्लाह ताला जो है वो कायनात से दलाइल दे रहे हैं, अपने इनामात का जिक्र कर रहे हैं ताकि लोग अपने रवैयों पर गौर करें, है ना। वसख्खर लकुमुल फुल्का, और मुसख्खर किया तुम्हारे लिए कश्तियों को। फुल्क जो है ये इस्म जिन्स है, एक के लिए भी और ज्यादा के लिए भी, वाहिद के लिए भी और जमा के लिए भी जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। जिसने कश्तियों को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया, लितजरिया फिल बहरि बि अम्रे, ताकि जो है वो समंदर में उसके हुक्म से चले, और पानी के ऊपर पहाड़ों जैसे जहाजों का चलना, ये इतना आसान तो नहीं है ना। तो ये कौन है जिसने पानी को मुसख्खर कर दिया कि कश्तियां चलती हैं, जहाज चलते हैं, और जो है वो तिजारत के भी और मुसाफरों के भी। तो अल्लाह ताला कहते हैं बे अम्री, ये मेरे हुक्म से। वसख्खर लकुमुल अनहार, और दरियाओं को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया। तो ये किसने किया, ये भी अल्लाह ने किया, है ना, कि समंदरों में से नहरें निकालकर जमीनों को जो है वो सैराब करना, और फिर उसको उसका जरखेज होना और फल फूल का आना। तो ये सारे काम भी जो है वो अल्लाह ताला के इज़न से हैं। وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ, जिसने सूरज और चांद को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया। सूरज की रोशनी यूं ही जो है वो दिन चढ़ता है तो सूरज की शुआएं तमाम कायनात पर जो है वो आती हैं, है ना। दर्जा, कोई उसे गर्मी हासिल करता है, कहीं उसे फसलें पकती हैं, कहीं रोशनियों में लोग उठकर अपना काम काज शुरू कर देते हैं, है ना। तो सूरज में भी से भी लोग फायदा उठाते हैं और चांद से भी। दाएबेन, लगातार सूरज निकलता है, लगातार जो है वो चांद निकलता है, और रात चांद को ग्रहण लगा था, अगर आप में से किसी ने देखा हो। और इसको कहते हैं, एक है सलातुल खुसूफ और एक है सलातुल कुसूफ, एक खा से है और एक काफ से है ना। तो चांद को जब ग्रहण लगता है तो सलातुल खुसूफ, और सूरज को जब लगता है तो कुसूफ। तो नमाज पढ़ना, सदका खैरात करना और तस्बीह करना, दुआ करना, ये अल्लाह की कुदरत की जो निशानियां हैं ये उनमें से हैं। तो जब अल्लाह चाहता है तो वो रोशनी देते हैं, और अल्लाह तब जाता है तो उनको ग्रहण ग्रहण लग जाता है। तो जब ग्रहण लग जाए तो क्या करना चाहिए कि अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए। तो मुसलसल ये फायदा देते हैं, चांद की ठंडक और सूरज की रोशनी में जो गर्मी है, ये भी अल्लाह की निशानियां हैं, तो अल्लाह को पाना चाहिए। वसख्खर लकुमुल लैला वन नहार, और इसने रात और दिन को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया। तो ये रात और दिन जो है अजीब एक जाब्ते के अंदर बने हुए हैं, है ना। मुसलसल दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, एक तसलसल से चल रहा है। हम कितने थक जाते हैं दिन भर काम करके, और रात जब आती है तो साथ ही नींद हम पे नाजिल हो जाती है, हम आराम कर लेते हैं, निढाल हो जाते हैं ना सब लोग, और हर तरफ जो है अल्लाह ताला फितरी जरूरत और हाजतों को पूरी करने के लिए रात की चादर को कायनात पर जो है वो डाल देता है। और जब मुनासिब वक्त गुजर जाता है रात का, तो फिर दिन की रोशनी, सूरज की रोशनी और दिन जो है वो आ जाता है। दाए बैन, सूरज चांद है तो वो भी दाए बैन है, और ला लैल और नहार है तो ये भी मुसलसल है, मुसख्खर अल्लाह ने किए हैं। तो ये सारी जो कायनात के दलाइल हैं, जो कि तौहीद और आखरत के दलाइल हैं, देने के बाद अल्लाह ताला क्या बात बताना चाहते हैं कि रसूल भी मैंने भेजा, तुम्हें भी मैंने पैदा किया, कुरान भी मैंने दिया। तो जब ये सारी नेमतें मेरी दी हुई इस्तेमाल जो करते हो, तो फिर जो है वो मेरे क्यों नहीं हो जाते। वह आताकुम मिन कुल्ली मा सअल्तुमूह, और जिसने वो सब कुछ तुम्हें दिया जो तुमने मांगा, कि जिस्मानी जरूरत की सारी चीजें तुम्हें दी, तो जो अल्लाह की सारी निमतें पाकर फिर तुम्हें क्या होना चाहिए था, अल्लाह का बंदा बनना चाहिए था, जो तुमने मांगा, जो जो तुमने मांगा। जैसे माँ बाप बच्चों को नहीं कहते कि जो जो तुम कहते हो तुम्हारी जरूरतें पूरी करते हैं, तो फिर पड़ोसियों का कहना क्यों मानते हो, माँ बाप की क्यों नहीं सुनते, है ना? दे हम खाओ, यहां से रहो हमारे पास, और फिर हमारी तुम सुनो ही ना। यानी बच्चे आपके हों और पड़ोसियों का काम कर लें, बच्चे आपके हों ग्रोसरी औरों की करें, तो आपका क्या हाल होगा, है ना? कि हमारा क्यों नहीं कहना माना, हम करो तो उनके काम हमारी इजाजत से। तो फिर दूसरे शरीक जो हैं अल्लाह के साथ, उनकी बंदगी नहीं हो सकती। वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नियमतों का शुमार करना चाहो तो नहीं कर सकते। यानी अल्लाह की नियमतों को गिनना चाहो तो तुम उसको गिन नहीं सकते, उसका हिसाब किताब उसको पूरा याद रखो तो रख नहीं सकते। तो अल्लाह की नेमतें बहुत ज्यादा है ना? और ये पूरी कायनात में जितनी अल्लाह ने हमें नेमतें दी हैं, पूरी कायनात आलमे अकबर है, और हमारा अपना वजूद आलमे असगर है। आलमे असगर, अपने सिर्फ जिस्म को ही देख लेना। आप उनसे पूछे जिनके पास आंखें नहीं है, आप उनसे पूछे जिनके पास पाँव नहीं है, आप उनसे पूछे हाथ नहीं है, उंगलियां नहीं है, नाखून नहीं है, नाक नहीं है, बच्चा पैदा हुआ तो नाक नहीं है, बच्चा पैदा हुआ तो पेट के अंदर आंत नहीं बनी, खाना खा ही नहीं सकता हत्ता के जो है वो उसका ऑपरेशन करना पड़ा, है ना? तो उनसे पूछो जिनको अल्लाह ताला ने जो है वो महरूम कर रखा है। और एक नेमत नहीं, लाखों करोड़ों नेमते हैं, और मैं और आप उनका शुमार नहीं कर सकते। पूरे समंदर स्याही बन जाए और पूरे दरख्त कलम बन जाए, तो अल्लाह की नेमतों का इदराक नहीं कर सकते, उनको लिख नहीं सकते। वाइन ताउद्दू नेमत अल्लाह ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों का शुमार करना चाहो तो कर नहीं सकते। जो मिले हयाते खिजर मुझे, और उसे मैं सरफे से ना करूं, तेरा शुक्र फिर भी अदा ना हो, तेरा शुक्र कैसे अदा करूं? तू दिया करे मैं लिया करूं, तू कहा करे मैं सुना करूं, कभी फूल बन के महक उठूं, कभी शमा बन के जला करूं। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी सहाबी के घर गए, उनके बाग में गए, तो उन्होंने पूरी खजूरों का खोशा तोड़ कर ले आए। आपके साथ अबू बकर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हुमा भी थे। तो आपने उस सहाबी से कहा, इब्न अल हैशम से, कि आप खजूरें चंद उतार के क्यों नहीं ले आए? कहा कि मैंने चाहा आप अपनी पसंद के मुताबिक जो है वो खजूर उतार कर इसमें से खाएं। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ठंडा पानी, ये साया और ये खजूरें कयामत के दिन इसके बारे में जरूर पूछा जाएगा, एक एक नेमत का, जिसके माँ बाप हैं और जिसके नहीं हैं, जो अमीर है जो गरीब है, जो खूबसूरत है जो बदसूरत है, जो जहीन है जो कम जहीन है, जो शहरी इलाकों में रहता है जो देही इलाकों में रहता है, जितनी भी नेमते हैं अल्लाह एक एक नेमत के बारे में पूछेगा। इब्ने आदम जो है वो अपने पाँव हिला नहीं सकता जब तक के अल्लाह पूछेगा नहीं कि बताओ कि जो नेमतें दी थी फिर तुमने उन नेमतों को लेकर किया क्या। इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ्फार, हकीकत यह है कि इंसान बड़ा ही बेइंसाफ और नाशुक्रा है। तो बात क्या है कि अल्लाह की अनायतें नवाजिशें तो बहुत हैं, लेकिन लज़लूमुन से मुराद क्या है, इंसान बड़ा ही जुल्म करने वाला है, इंसाफ नहीं करने वाला, बड़ा ही शिर्क करने वाला है ना? तो ला जुलूमुन यहाँ पर बेइंसाफ के मानों में है कि उसने अदल नहीं किया, इतना कुछ अल्लाह से लिया और फिर अल्लाह को एक माना ही ना। कफ्फार यहाँ पे नशुक्रे के मानी में है कि इंसान जो है वो अल्लाह की नशुक्री करता है, नेमते पाने के बाद, अनगिनत नेमतों को लेने के बाद, फिर जो है वो अल्लाह ताला की जो है वो शुक्रगुजारी इख्तियार नहीं करता। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का कौल है कि उन्होंने कहा कि ए रब, मैं तेरा शुक्र किस तरह अदा करूं, जबकि शुक्र बजाय खुद तेरी तरफ से मुझ पर एक नेमत है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए दाऊद, तूने मेरा शुक्र अदा कर दिया जबकि तूने ये इतराफ कर लिया कि या अल्लाह मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करने से कासिर हूं। तफसीर इब्ने कसीर। तो क्या बात पता चलती है, जिसको ये एहसास हो जाए ना कि मैं अल्लाह तू मुझे बता मैं तेरी बंदगी कैसे करूं, मैं तेरा शुक्र अदा कैसे करूं, गोया कि वो शुक्र अदा करने लग गया है। इतराफ, इकरार जो है वो ये बहुत जरूरी है, और फिर उसके बाद अपनी जिंदगी को उसके मुताबिक ढाल देना। तो अल्लाह ताला हम सबको अमल की बेहतरीन तौफीक दे, سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.